साईराम, साई वचना अमृत कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है।
Thank you.
मथुरा में कंस का राज्य था, त्राही त्राही मची हुई थी। देवकी और वसुदेव कारागृह की काल कोठरी में बंद थे। बाहर मूसलाधार वर्षा हो रही थी। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्य रात्रि के समय कमल नयन चतुर्भुज नारायण अपने श्री हस्तों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए प्रकट हो गया। चारों ओर प्रकाश बिखर गया। प्रभु ने कहा, मेरे चतुर्भुज नारायण स्वरूप का दर्शन कर लो। वो 11 वर्षों तक मेरा ध्यान लगाना, मैं अवश्य आपके पास आऊंगा। नारायण का चतुर्भुज स्वरूप अदृश्य हो गया और 2 हाथों वाला छोटा छोटा बाल कान्हा कन्हैया श्री कृष्ण कन्हैया वहां पर प्रकट हो गया। भगवान श्री विष्णु के 8वें अवतार थे भगवान श्री कृष्ण। श्रावण मास के 8वें दिन ही उनका जन्म हुआ। देवकी का अर्थ है निष्काम बुद्धि, वसुदेव का अर्थ है सात्विक गुण, 11 वर्षों का अर्थ है 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 1 मन। जब ये सब एकाग्रित होकर 11 वर्षों तक परमात्मा के ध्यान में रहें तो प्रभु का साक्षात्कार हो जाता है। कहा जाता है इसी वजह से गीता में 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखलाया। कारागृह के द्वार बंद है, वसुदेव के हाथ में बेड़ियां हैं, जंजीरें बंधी हुई हैं। उन्होंने जैसे जैसे लल्ला को एक टोकरी में लिटाया और भगवान श्री कृष्ण की टोकरी को जिसमें लेटे हुए थे भगवान, उनको उठा के अपने सर पे रखा। अरे ये क्या, सारी बेड़ियां खुल गई, सारी जंजीरें टूट गई, यहां तक कि बाहर खड़े हुए द्वारपाल सो गए, कारागृह के द्वार भी खुल गए। मस्तिष्क में बुद्धि है, जब बुद्धि ईश्वर का अनुभव करती है तो संसार के सारे बंधन टूट जाते हैं। कारागृह एक संसार का मोह है, संसारिक मोह रूप है, सारा संसार इसमें सोया हुआ है, इसमें फंसा हुआ है, इसमें दबा हुआ है, इसमें ग्रस्त है। जो परमात्मा को अपने सर पर विराजमान करता है उसके लिए कारागृह तो क्या, मोक्ष के द्वार भी खुल जाते हैं। ब्रह्म संबंध होने से सारे बंधन टूट जाते हैं। वासुदेव जी कारागृह से बाहर निकलते हैं, मथुरा से गोकुल जाना चाहते हैं, उसके लिए नदी को पार करना है, यमुना नदी। और बाहर हो रही है मूसलाधार वर्षा, यमुना में बाढ़ आई हुई है, पानी बहुत जोर से बह रहा है। वसुदेव जी धीरे धीरे नदी में प्रवेश करने लग जाते हैं। अचानक वहां पर एक नाग आके भगवान श्री कृष्ण के ऊपर छत्र छाया कर देता है। वसुदेव जी आगे बढ़ते हैं, यमुना का पानी उनके नाक तक पहुंच जाता है, रत्ती भर भी पानी ऊपर आया वह सांस नहीं ले पाएंगे। अचानक मेरे आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण बाल श्री कृष्ण अपने नन्हे से पांव को टोकरी से बाहर निकालते हैं इस प्रकार से कि यमुना का जल उनको छू ले। जैसे ही यमुना का जल भगवान श्री कृष्ण को छूता है एकदम पानी नीचे हो जाता है। जिसने अपने सर पर भगवान को धारण किया हो उसको कौन डुबो सकता है। दूसरी ओर गोकुल में यशोदा की पुत्री हुई, माता यशोदा की पुत्री हुई, वसुदेव जी वहां पर श्री कृष्ण को रख के उस कन्या को उठा के वापस ले आते हैं। जैसे ही वह कारागृह में आते हैं एकदम से सारे बंधन वापस आ जाते हैं क्योंकि वह कन्या योग माया है। विचार कीजिएगा, जब माया आपके सर पर आती है तो सारे बंधन भी आ जाते हैं। दुष्ट कंत भी योग माया का वध नहीं कर पाया, उसने कन्या को लेके पटका जमीन पर मारना चाहा, लेकिन वह कन्या हाथ से छूट गई, हवा में चली गई, आसमान में चली गई, वहां जाके आकाशवाणी हुई, एक कंत से दुष्ट तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है। गोकुल, गो का अर्थ है इंद्रियां, कुल का अर्थ है हृदय। यमुना भक्ति स्वरूपा कर्म स्वरूपा, यमुना के किनारे गोकुल, यमुना के किनारे मथुरा, मथुरा का अर्थ है पावन काया, शरीर को मथुरा बनाना है। शरीर को मथुरा बनाना है, हृदय को गोकुल, भक्ति रूपा कर्म स्वरूपा यमुना के किनारे बसना होगा। कोई 3 वर्ष के होंगे काना, कर्ण ने चारों ओर अपने दूत भेज दिए, अपने सैनिक भेज दिए, जहां भी कोई बच्चा मिले छोटा उसका वध कर दो। कहते हैं पूतना भगवान श्री कृष्ण को मारने हेतु वहां पर अपना रूप बदल के पहुंची, लल्ला को खिलाने हेतु अपने गोद में लिया, उसको सतन पान करवाने लग गई, दूध पिलाने लग गई, और सतनों पर जहर लगा रखा था कि जैसे ही विष पिएगा ये बालक मर जाएगा, लेकिन इतिहास साक्षी है पूतना मारी गई। चतुर्दशी का दिन था, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, मन बुद्धि चित अहंकार, ये 14 ठिकाने हैं जहां पर पूतना रहती है। विचार करना होगा हमारे इन 14 ठिकानों में, हमारे मन में, हमारे बुद्धि में, हमारे चित्त में, हमारे अहंकार में, हमारे ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां में कहीं पर कोई खराब चीज तो नहीं है। 3 वर्ष का अर्थ होता है 3 गुण, तामसिक राजसिक सात्विक। इंसान 3 गुणों में फंसा हुआ है, इसको पार करना है। पूतना थी कौन? कहते हैं जब भगवान विष्णु वामन अवतार में आए थे, उन्होंने राजा बलि से तीन पग भूमि मांगी थी। उस समय वहां पर उनकी पत्नी विद्यावती और उनकी पुत्री रतनमाला थी। रतनमाला ने जब वामन अवतार को देखा, उनके मन में एक इच्छा प्रकट हुई, काश मेरा ऐसा पुत्र हो तो मैं उसको दूध पिलाऊं। लेकिन जब वामन अवतार ने राजा बलि को पाताल में भेज दिया, तब वही रतनमाला क्रोध में आ गई, इसको दूध नहीं, इसको जहर पिलाऊंगी। वही रतनमाला पूतना बनकर आई थी। कहने का तात्पर्य, जब परमात्मा के सामने होते हैं, मन में जो इच्छा लेके आते हैं वो पूर्ण हो जाती है। ध्यान रहे, परमात्मा सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, सर्वशक्तिमान है। आज जब भी परमात्मा का ध्यान करते हैं, परमात्मा वहीं पर है। अगर आपने कोई चीज गलत मांग ली, वह भी पूरी हो सकती है। इसलिए भगवान बाबा कहते हैं, आई गिव यू वट एवर यू वॉन्ट सो दैट वन डे यू मे वॉन्ट वट आई वॉन्ट टू गिव यू। पूतना ने भगवान श्री कृष्ण से आंखें नहीं मिलाई थी, क्योंकि आंखें मिलने से पूतना के सारे पाप नष्ट हो जाते। विचार कीजिएगा, पूतना आंखों से भीतर आती है। हमारे जीवन में त्रुटियां कैसे आती हैं? आंखों से आती हैं, कानों से आती हैं। आप बारंबार बैठ के इंटरनेट में, मोबाइल में, फेसबुक में, ट्विटर में जो देखते रहेंगे वो आपके भीतर आता जाएगा। एक प्रकार से प्रदूषण फैल जाता है हृदय के अंदर। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण गोपियों की मटकी फोड़ देते थे, माखन खाते थे। अरे कौन कमी थी माखन की घर में कन्हैया को? मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, सुना होगा भजन आपने। माखन का अर्थ है पवित्र हृदय। वह तो आपके हृदय के प्रेम को पाना चाहते हैं, केवल आपका प्रेम चाहते हैं। भगवान बाबा ने क्या कहा, लव इज द सोर्स, लव इज द पाथ, लव इज द गोल। प्रेम ही स्त्रोत्र है, प्रेम ही रास्ता है, प्रेम ही लक्ष्य है। सात वर्ष होंगे कन्हैया, इंद्र की पूजा की तैयारी चल रही थी, तो बाल जी कृष्ण ने अपनी माता यशोमती मैया से बोले, मैया हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? मां ने कहा, इंद्र हमें वर्षा देते हैं, उससे हमें भोजन मिलता है। कन्हैया बोले, हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए ना, वर्षा इंद्र के कहने थोड़ी आती है। गोवर्धन में वनस्पति है, गोवर्धन में पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ऊपर से बादल जाते हैं, बादल पेड़ों की ओर आकर्षित होते हैं, उससे उनका भाव नीचे आता है, उनका भार नीचे आता है, वहां बरसात होती है, उस बरसात से घास उगती है, गैया उस घास को खाती है, गैया उससे दूध देती है, दूध से माखन बनता है, दूध से घी बनता है, दूध से लस्सी बनती है। हम उस दूध को जाके मथुरा में बेचते हैं, उससे हमारा लालन पालन पालन चलता है तो हमें गोवर्धन की पर्वत पूजा करनी चाहिए, हमें गैया की पूजा करनी चाहिए, इंद्र क्यों? इंद्रदेव को क्रोध आ गया, क्रोध में आके मूसलाधार वर्षा कर डाली, चारों ओर तबाही मच गई, बाढ़ आने लग गई। कहते हैं 60 वर्ष के कन्हैया ने अपनी नन्ही से उंगली में पूरे गोवर्धन पर्वत को ऊंचा उठा लिया, सबको आश्रय दिया। छोटी उंगली का अर्थ है सात्विकता, यहां पर इंद्र का अर्थ है अहंकार। गोवर्धन पर्वत से पूर्व में जाएं तो जगन्नाथ जी हैं, दक्षिण में जाएं तो रामेश्वरम, पश्चिम में जाएं तो द्वारका, उत्तर में जाएं तो बद्रीनाथ। गोवर्धन बिल्कुल बीच में पड़ता है। इंद्र जब वासनाओं की वर्षा करते हैं, अभिमान की वर्षा करते हैं, उससे बचने के लिए आपको चाहिए छोटी उंगली। छोटी उंगली का अर्थ है सात्विकता, सात्विक गुण, सद्गुण, संतों का संग, अच्छी किताबें, अच्छी बातें, अच्छे लोग, अच्छी प्रवृत्ति। कहते हैं कन्हैया गोपियों के कपड़े चुरा लेते थे, बेचारी नदी में नहा रही होती थी नग्न अवस्था में। लोग कहते हो व्हाट ए शेमफुल एक्ट। और वस्त्र लेके पेड़ में चले जाते थे, बैठ के बांसी बजाते थे अपनी। कन्हैया को किसी को नग्न देखने की आवश्यकता नहीं थी। कहा जाता है सारी स्त्रियां हैं, पुरुष हैं जो केवल कन्हैया हैं। कुमारियों के मन में भावना थी कि वह नारियां हैं, ये अहंकार था। दूसरी बात, योगियों का शरीरी काम तो भाग जाता है, जो हिमालय की गोद में बैठ के हजारों सालों से तपस्या करते हैं, परंतु मन से काम की वासना नहीं जाती। वृद्ध अवस्था में इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं, लेकिन मन से काम नहीं मरता। ऋषि मुनि भी काम के आगे हारे हुए थे, उन्होंने ही परमात्मा से प्रार्थना करी, हमें ही रक्षा करो, हमें रास्ता दिखलाओ। वही ऋषि मुनि गोपियां बन के आई। शरीर को वस्त्र छुपाता है, आत्मा को वासना छुपाती है, और श्री कृष्ण उन वासनाओं की चोरी करते हैं। देखा होगा अपने रासलीला होती है शरद के महीने में, ठंड के महीने में, अकेले कृष्ण, हजारों गोपियां, रासलीला को साधारण स्त्री की लीला नहीं है, अपने शरीर को भूली हुई, देह भान को भूली हुई वो स्त्री है जो केवल परमात्मा के ध्यान में, चिंतन में, कंटम्पलेशन में डूबी होती है। अगर आपको परमात्मा तक जाना है तो आपको केवल अपने आप को उनके परमात्मा में डुबोना होगा। ईश्वर के साथ क्रीड़ा करोगे तो जीव ईश्वर से मिल जाएगा। कहा जाता है 16,008 पत्नियां थी कन्हैया की, कैसे हो सकता है? कहा जाता है एक बार एक राजा ने 16,008 कन्याओं का अपहरण कर लिया था, कन्हैया ने उनको छुड़वाया, तो इसलिए कहा जाने लगा कि वो उनकी पत्नियां बन गई। आंतरिक कारण कुछ और है। हमारे हृदय में चक्र है जहां पर 8 पंखुड़ियां वाला एक कमल का फूल होता है, जो 8 लोकों का, 8 दिशाओं का प्रतीक है। उस सर पर सतारा चक्र जिसमें हजार पंखड़ियों का कमल होता है, हर पंखड़ी की 16 कलाएं हैं, सब मिला के 16,008। जब हम इन पर नियंत्रण पा लेते हैं तो हम ईश्वर बन जाते हैं। कहते हैं शिशुपाल का वध किया था सुदर्शन चक्र से, हजार माफ कीजिएगा 100 पाप नाश किए थे उनके, उनके एक के पाप 100 पापों को सहने के बाद शिशुपाल के गर्दन को सुदर्शन चक्र से काट दिया। असल में सुदर्शन का मतलब होता है शुभ दर्शन, बस इतना समझ लें, सुदर्शन शुभ दर्शन। जब आपके नेत्र हमेशा शुभ चीज को देखने का प्रयास करते हैं, आपने कितने भी पाप किए हों पहले, वो सारे पाप खत्म हो जाते हैं, क्योंकि आपने अपने आप को परिवर्तित कर दिया है, ट्रांसफॉर्म कर दिया है, अब आप सही दिशा में जा रहे हैं। ये सुदर्शन चक्र आपको मुक्ति प्रदान करता है। जय श्री साईं राम।